குருவே குரு சந்த मैं पहले सर्वप्रथम अपने परम आराध्य नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु का श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वास्तव ज्ञापन कर तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु द्वय परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति दैव मनोविष्ण और अपने शिक्षा गुरु भक्ति सर्वस्व गिरि महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवती प्रणय की पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। ये लोग हमारे ऊपर में सब लोगों के ऊपर में सुप्रसन्न हो। तत्पश्चात सभापति महोदय उपस्थित मेरे परम पूज्य पाद सुगंधि पाद में वैष्णव एवं वैष्णवी जथा जो मेरा अभिवादन ग्रहण कर सबसे पहले हम परम पूज्य पाद कुछ गुरु महाराज जी के संबंध में दो चार बातें निवेदन करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य परिकरों के साथ जगत में अवतरित होकर के विशेषकर राय रामानंद स्वरूप दामोदर इत्यादि प्रसाद में आकर के अपनी मन वैंसाओं की कोई थी ये चैतन्य महाप्रभु और पुण्य ही अंतर कृष्ण बहिर्गौर भीतर से ये राधा भाव कांति को ग्रहण कर ये कृष्ण ही है और ऊपर से सचि नंदन गौर हरि जरूर है। तो जिस समय आए उसमें इनके हजारों परिकर इनके साथ ही आए समस्त लीलाओं के परिकर इनके उसी प्रकार से उनके अंतरंग जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब आए उन्हीं की मनोवंशा पूर्ण करने के लिए तो उस समय भी उनके साथ में उनके सारे परिकर लोग थे। वो एक एक व्यक्ति ऐसे थे जो सारे विश्व ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते उन लोगों में से। और कितना मैं नाम गिनाऊं संक्षेप में यही कह रहा हूं कि उन परिकरों में से परम पूज्यपाद श्रील भक्ति दैव माधव गोस्वामी महाराज परम पूज्यपाद भक्ति सर्वस्व गिरि महाराज जी हम लोगों के गुरु जी। और यदि हम नाम गिनाए तो वैखानस महाराज परम पूज्यपाद पुरी महाराज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और भी हम लोगों का सौभाग्य हुआ उनके दर्शनों के प्रभुपाद के इन सब लोगों के साथ में अवतरित हुए। और इसीलिए कुछ ही दिनों में सारे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की वाणी गौरवाणी ये मठ भी है गौरवाणी का प्रचार किया। परम पूज्यपाद हमारे अशोक कृष्ण भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज प्रारंभ से ही बड़े ही निर्भीक थे बड़े दयालु थे वैष्णवों का सब गुण इनमें कुट कुट करके भरा पड़ा था। विशेष करके मैं जब विचार करता हूँ तो देखता हूँ ये कतिपय लोगों में से ही थे जिनमें तिनादपि सुनी तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेवी ये सब गुण भरे थे। यहाँ तक कि आज हम अपने गुरु भाई को भी शिष्य करते हुए देखना नहीं चाहते हैं कि वो शिष्य करें, और वो अपने गुरु भाई को छोड़ दो उनका शिष्य भी प्रशिष्य भी शिष्य कर रहा हो और उद्घाटन के लिए बुलाए मठ इत्यादि के लिए मंदिर के लिए तो वो सहस्र चले जाते हैं। उनके शिष्यों को बड़े आदर से देखते हैं। इतना धैर्य था कि क्रूर का कारण उत्पन्न होने पर भी उनको क्षोभ नहीं होता था, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्रोध का कारण उपस्थित हो रहा है, उनका शिष्य भी उनसे लड़ झगड़ रहा है और क्षमा की मूर्ति बड़े प्रयास से उसको समझाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग आजकल बहुत विरल विद्वान वैसे शास्त्रों के मर्मज्ञ ऐसे जब है जिन्हें ब्रह्मचारी जब उनका नाम था तो बात के समय में उस समय में परम पूज्य पाद वन महाराज उनका नाम नंद सोनु ब्रह्मचारी के साथ में काशी में वाराणसी में गए और वहां विश्व संस्कृत विश्वविद्यालय के उस समय के तदानीन्तन जो प्रिंसिपल थे वो भारत के गणमान्य विद्वानों में से संस्कृत एक थे। उस समय में वयोवृद्ध थे, करीब 80-85 वर्ष थे। भारतवर्ष में उनका बड़ा सम्मान और उनके यहाँ घर में गए और वो स्नान इत्यादि करके जब निकले तो इनसे पूछा यह ब्रह्मचारी तुम लोग कहाँ से आया है? मायापुर से आया है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती सब लोगों को एक तरफ से शुभ्र और सब लोगों को मुसलमान और सबको ये उपवीत दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग वहां से तो नहीं किंतु वही प्रभुपाद के यहाँ से हम लोग आए हैं और उन्हीं का वाणी प्रचार करने के लिए आए हैं। उन्होंने आपने ऐसा क्यों कहा ये सबको शुक्र इत्यादि को ब्राह्मण बना रहे हैं? क्या आप श्रीमद भागवत का श्लोक जानते हैं? जस जल लक्षणम पुलको गणाभिव्यंजकम जदा नत्रापि दृश्यते तत्तेन योगिनी। आप इस अर्थ बतलाइए चतुर्वर्ण मैं गुण पर इसका अर्थ आप बतलाइए। थरथर कांपने लगे, उत्तर नहीं दे सके और ऐसा मालूम ये गिर जाएंगे तो उनकी पत्नी घर से निकल करके उनको किसी प्रकार से वहां से निकल। ऐसे निर्भीक वक्ता थे, नहीं तो प्रभुपाद का प्रचार ऐसे ही सारे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है। इसलिए उनके एक एक ब्रह्मचारी भी सिद्धांत ब्रह्मचारी का नाम सुना होगा प्रभुपाद से, किस प्रकार से बंगाल में और प्रभुपाद जी का प्रचार जाकर के दीप भरी सभा में उन्होंने कहा राम छागल इसको कहा और कहा दैदैकानंद के द्वारा यह भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है, सारी सभा उखड़ गई और सब उनके ऊपर में बिगाड़ने लगे। उस समय में हमारे परम विद्वान संस्कृत के प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य वो थे नहीं तो, नहीं तो याद नहीं, बड़ी विद्वान जहाँ पर विद्वत सभा होती तो प्रभुपाद उनको भेजते और सभा में भारती महाराज को भेजते
मुक्ति मुक्ति भारती
खूब संस्कृत तो बोलते हैं ना लंबा चौड़ा देश जमान थी जहाँ तो उन्होंने नाम समझ तो वो उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया टेलीग्राम दिया हमारा सब प्रचार इन्होंने चौपट कर दिया और उन्होंने भरी सभा में इस प्रकार से उनके विरुद्ध में बोले तो उन्होंने आज हमारा लाख कोटि रुपए का प्रचार हुआ। मैं आ रहा हूँ और सभा से बुलाओ और फिर जिसको हाय वो खंडन करने के लिए आए। नहीं भाई हमको याद नहीं है,
बहुत प्रसिद्ध विद्वान नेमी महाराज,
नेमी महाराज की
लोबस्ती देवी महाराज
वंदे नंदन क्या वो कहते थे नंदम वंदे जस्या लिंदे परमेशम खड़े होकर के वैसा तो अद्भुत अद्भुत एक एक की बात में ब्रह्मचार्य साधारण की बात कर रहा हूँ और ये लोग तो ऐसे थे दिग्विजयी लोग थे गिरि महाराज भाषण ऐसा देते थे एकदम सभा गड़गड़ करने लगती उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो आए परंतु जब आज प्रभुपाद जी के जाने के बाद में हमारे शिक्षा गुरु श्री भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी मठ को छोड़ करके तब फिर प्रचार करना और कहां पंजाब में और उधर में कहां में आसाम और उधर में दक्षिण में हैदराबाद और उत्तर में देहरादून इत्यादि सबक प्रचार किया। आज देख रहे हैं आपके विदेशों में भी परम पूज्य पाठ भक्ति विलासित महाराज बल्लभसित महाराज जी आज विदेशों में कैसे प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों के लिए उन्होंने सपाट मैदान बना करके रख दिया ये हम लोग उसमें प्रचार कर सकते नहीं तो पहले जैसा जैसी स्थिति थी उसमें प्रचार करना बड़ा भारी कठिन था। अब तो कोई प्रतिवाद करने वाला नहीं प्रभुपाद जी के समय में जिस समय आरंभ किया प्रभुपाद को जान मारने के लिए किस प्रकार से नवद्वीप में वहां के सहजिया लोगों ने और वहां के जाति गोस्वामी ने उन्हें मारने के लिए चेष्टा की थी ये सभी लोग आप लोग जानते हैं इन्हें बड़ी कठिनाई। आज विदेश में हम लोग जाते हैं कोई भी प्रचार में विरोधी कुछ करने की कोई हिम्मत नहीं रखता बड़ी बड़ी सभाओं में विदेशों में भी हम लोग जाकर के बोलते हैं कोई भी प्रतिवाद करते हैं ये सब इन्हीं की महिमा है। आज हम यहाँ पर गौड़ वाणी में विरोधी गौड़ मठ में उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके चरण में है। इनकी महिमा जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। आज परम पूज्य बात माधव गोस्वामी महाराज के एक इधर में एक इधर में दो मठ हैं और सुंदर रूप से यहाँ से अभी भी सारे विश्व में भारतवर्ष में यहाँ से प्रचार ये गौरवाणी है क्या किसको कहते हैं गौरव हमारे समय से गौरवाणी ये रूप गोस्वामी है महाप्रभु जी की महाप्रभु जी के भावों का की अभिव्यक्ति और उसकी मनोभीष्ट पूर्ति ये सिद्धरूप गोस्वामी है। आज चार पांच दिनों से हमारे यहाँ सिद्धरूप गोस्वामी के संबंध में महत्व के संबंध में उनके चरणों के में हम लोग पुष्पांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य पाद भासी महाराज जी भी कल गए थे बहुत सुंदर उन्होंने भाषण दिए और भी बड़े बड़े विद्वान लोग धन्य मथुरा और वृंदावन के आए थे। हम लोगों को समझने के लिए जब गौण वाणी किसको कहते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये सब हम लोगों को समझना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता की बात है आप जैसे तैसे वृंदावन में क्यों वृंदावन में और इस समय में क्यों आए अभी वृंदावन के पंथ की अभी क्या विशेषता है किस लिए आए अभी चार तरफ में झूले पड़ रहे हैं सावन में झूला पड़ रहा है रेम झेम वर्षा हो रही है चारों तरफ में ऐसा कोई जगह नहीं है कोई मंदिर नहीं है जो मठ नहीं है घर नहीं है जहां पर कि झूले नहीं झूल रहे राधे झूलन पधारो झुक आई बदरा इसी के लिए सारे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं कृष्ण की अद्भुत अद्भुत यहाँ लीलाएं हुई मथुरा में उनका जन्म नहीं हुआ मथुरा में आविर्भाव हुआ जन्म हुआ गोकुल ब्रज में उनका जन्म हुआ पल्ले में झूले वही गोकुल में और फिर यहाँ पर कैसी कैसी इनकी लीलाएं हुई आपके पास में ये भी लीला का स्थान है ऐसा ब्रज में कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर कृष्ण की लीला का स्थान नहीं है ये तो काली अदा है पाटी में काली के ऊपर में नृत्य किया उन्होंने किसने किया उसका भी बहुत रहस्य हमारे गोस्वामी ने दिए हैं ये गोपियों को दिखलाना था कि मैं इतना वीर हूं, इसलिए उन्होंने नृत्य किया। इसके अतिरिक्त यहाँ राक्षसस्थली है जहां पर राक्ष हुआ था, यहाँ पर सेवा कुंज है। सेवा कुंज माने क्या? यहाँ पर कृष्ण ने राधा जी की सेवा की, सर्वत्र कृष्ण की पूजा होती है, उन्हीं की प्रधानता। और वृंदावन के सेवा कुंज में जहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते थे, जीव गोस्वामी पीछे थे, दामोदर महाराज दामोदर जी को रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकट कराए। ये सेवा कुंज में कृष्ण स्वयं स्वयं उनकी सेवा करते हैं। और भी कितने स्थान है झाड़ू मंडल से लेकर के राधा दामोदर और उधर में किसी घाट बंसी बाटी इत्यादि सब जितने भी स्थान है वृंदावन में कौन कौन सी लीलाएं थी, श्रील रूप गोस्वामी ने इसका भी वर्णन किया है। तो अभी हम लोग रूप गोस्वामी का मना रहे थे, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। रूप गोस्वामी अपने चरणों में हमें स्थान दे, मैं उनका आश्रय लेता हूँ। इसलिए श्री चैतन्य जी के मनोभीष्ट की पूर्ति वही गौरवाणी। तो गौरवाणी क्या है? रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को कैसे पूर्ण किया, उनका मनोभीष्ट क्या था, ये समझने के लिए हमारे गोस्वामियों का शरणागत होगा होना होगा। उन्होंने बताया, राधाया प्रणय महिमा कितो आम युवा अस्वादो जिनाद्भुत मधुर में कितो आम अभी। चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट क्या थी? कृष्ण लीला में उनकी तीन वांछाएं पूर्ण नहीं हुई, और वो तीन वांछाएं थी राधिका जी का प्रणय भाव करता कृष्ण के प्रति। कृष्ण संसार के आराध्य हैं, कृष्ण जैसा कोई भी सुंदर नहीं है। कृष्ण के दर्शन से सभी लोग तृप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण की आंखें तृप्त होती हैं कहां, राधा जी के सौंदर्य और माधुर्य। राधा जी सभी जगह बड़ी हैं, किंतु कृष्ण सोच रहे हैं मैं राधा जी के विरह में पागल नहीं हो जाता, मुझे दिल पे उन्माद इत्यादि नहीं होता। पता हमारे अंदर में कुछ ऐसा गुण है, हमारी माधुर्मा ऐसी है जो प्रेम रस के सर्वश्रेष्ठ आश्रय जो श्रीमती राधिका है, वो इस प्रकार से मेरे प्रति उनका प्रणय है। हमारे अंदर में वो माधुरियां हैं, उसको राधा जी सर्वोत्तम रूप में आस्वादन, और उसके पैसे उनको सुख होता है। मैं राधा जी को देखता हूं तो मुझे जो सुख होता है उसे कोटि गुण सुख होता है यदि मुझे वो देखती। तो वो क्या है, इन्हें पूर्ण नहीं कर सके, इसलिए राधा जी का भाव और अंग कांति लेकर के वो जगत में सचिनंदन गौधरी के रूप में। और भी एक विशेष कारण, रसिक शेखर कृष्ण परम परम एक जो वैश्वतार इच्छा उद्गम। कृष्ण रसिक शेखर है किंतु साथ ही साथ परम करुण है, अहै सुखी करुणा सागर है। इन दोनों वंशाओं के कारण, इन दोनों कारणों गुणों के कारण, एक तो राधा जी का भाव आस्वादन करने के लिए आया, आस्वादन क्या इसलिए सरस्वती से करें, किंतु भविष्य में कैसे व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इसका आस्वादन कर सकता है, इसलिए राजमार्ग का प्रवर्तन किया, ये उनकी करुणा है। शुभ प्रकाश पिताम मनमंगल इत्यादि ये शखर रस के पंजर है। मैया जसोदानंद बाबा ये बात्सल्य रस के पंजर है। गोपियां उनमें भी लगता शिक्षा था, और उनमें भी श्रीमती राधिका जी ये मधुर रस के लिए लोग पंजर है। इनको रागात्मिक जन भी कहता है, जिनके आत्मा में अनुराग है स्वभावतः ममता अतिशय अंकिका भावी शांत रूप में घन स्वरूप में, तीनों कृष्ण की सेवा कर सकते हैं और करते हैं। जब तक इनका अनुगत न हो तब तक इस भजन में करोड़ों करोड़ों जन्म में भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण होकर के राधा जी का भाव दे करके इस चीज को देने के लिए स्वयं आए और राज मार्ग का प्रवर्तन किया। भक्ति दो प्रकार की, अन्य अभिलाषित संयम ज्ञान कर्मार्थ जनावृतम आनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रूपम नैवेद्य रूप में वैष्णव के अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा तन मन वचन और सारी इंद्रियों के द्वारा सारी शक्तियों के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल रूप में, अनुकूल रूप में उनकी सेवा और प्रतिकूल रूप में जो नए भक्ति के लिए बाधक है उसको न करना। इस प्रकार से भाव तक जब कृष्ण की सेवा होती है तब उसको भक्ति कहते हैं, और जब वही भक्ति अन्याभिलाष कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई चीज की वांछा न हो, सांसारिक या लौकिक भाव हो, किसी प्रकार की इच्छा न हो, कामना न हो, और वह भक्ति कर्म और ज्ञान के द्वारा आच्छादित न हो, तब वही भक्ति उत्तम भक्ति होगी। ये कहां से आरंभ होगी? कृष्ण सेवा की लालसा से आरंभ करके, जिसको श्रद्धा कहते हैं। कृष्ण भक्ति करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, यहां से श्रद्धा आरंभ होगी। और कहां तक जाएगी साधन भक्ति, भाव भक्ति, और अंत में सिद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति, और उसमें स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महामहा महाभाव रूढ़ अधिरूढ़, और इसके बाद में मोहन मोदन, और अंत में मादन अवस्था, जैसे विरह में भी मिलन और मिलन में भी विरह, ये सारी स्थितियां होती है। ये राधिका जी के भाव है और कहीं किसी में नहीं है। कृष्ण उसी भाव को दिया, चैतन्य महाप्रभु की अभिलाषा यही थी, और इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु के पैदल श्री रूप गोस्वामी ने इसकी स्थापना की। स्वरूप दामोदर राय आनंद थे, किंतु जहां कृष्ण नाम सुनते थे पावन हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे महाप्रभु स्वयं, किंतु रूप गोस्वामी को प्रयाग ने ऐसी औदार्य शक्ति भर दी कि कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते समय और उनका स्मरण और कीर्तन करते समय भी उनको मूर्छा नहीं होगी। इसलिए उन्होंने उज्जवल मणि के जितने भी उदाहरण दिए हैं और दो ग्रंथ और विदग्ध मार्गों में ऐसी चीजों को उदाहरण उन्होंने दिया है जिसमें उनको पागल हो जाना चाहिए था, मूर्छित हो जाना चाहिए थे, किंतु मूर्छित नहीं हुए। महाप्रभु की विशेष कृपा से उन्होंने कहा था, रस तो एक अपार अगाध अनंत सागर है कृष्ण भक्ति रस, मैं उसमें से एक बिंदु केवल तुम्हें चखा रहा हूं। और तब फिर उन्होंने उनको बतलाया, वर्णन किया, केवल अपने यही सुनित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य स्वरूप दामोदर रामानंद इत्यादि जितने भी उनके परिकर थे उन सबसे निवेदन किया कि इसके हृदय में आप लोग शक्ति का संचार कीजिए, ये हमारे भावों को ये जगत में प्रकाश। महाप्रभु नहीं कर सके, स्वरूप दामोदर इत्यादि नहीं कर सके, किंतु इनको सभी से निवेदन करके शक्ति संचय किया और अपने भी शक्ति संचरित की। इस तरह से इन्होंने महाप्रभु के जो अंतर्निहित उद्देश्य और भाव थे उनका उन्होंने उद्घाटन अपने ग्रंथों में किया, जिसको देख करके हम लोग भी धीरे धीरे इसके तक में बढ़ सके। हजारों जन्मों में भी यदि रूप गोस्वामी के चरणों की धूली की चिंकर भी हम लोग हो सके, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यही हमारे भजन का उद्देश्य है। इसलिए हम लोगों को पहले हम किस लिए भजन करने आए हैं, हमारे भजन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये पहले ठीक होना चाहिए। यदि यह ठीक नहीं हुआ तो फिर रास्ता कैसे, मार्ग कैसे ठीक होगा? ये चीजें जो बताया हमने, ये वैदिक भक्ति के द्वारा संभव होगी थी। और वैदिक भक्ति का अतिरिक्त हमें कोई दूसरा सहारा नहीं है, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां कैसी हैं? ये प्राकृत इंद्रियां हैं। और प्राकृत इंद्रियों पर अप्राकृत ये कैसे हो सकता है? ये जीवा हमारी प्राकृत, हमारा काम प्राकृत, हमारा मन प्राकृत, हमारा सब कुछ प्राकृत। इस पर राधा कृष्ण का चिंतन, उनका नाम जो समस्त वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, और बताया ना, नारद दीना जीवन सुधोर्मी नित्या माधुरी पूरा संकृष्ण नाम काम स्फुर में रसने रसे। ये नाम को साधारण मत समझना, ये स्वयं राधा और कृष्ण है, महाप्रभु स्वयं है। ये इसमें सारी शक्ति वो नीत है जो स्वरूप के कृष्ण में और राधा जी में भी, महाप्रभु जी में भी नहीं है। सारी शक्तियां उसमें भरती है। और हम लोग जैसे लोग जो प्राकृत जीवा और प्राकृत मन और शरीर वाले हैं, इसी का चिंतन करते करते धीरे धीरे वो शक्ति इस पर आएगी, संचयित होगी। इसका सिर्फ कोई दूसरा उपाय नहीं है। अभी जो हम लोग साधन कर रहे हैं प्राकृत इंद्रियों के द्वारा, इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा कृति साध्या भवेश साधना ससाधन विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राप्त। भाव तो नित्य है, परिक्रम में नित्य है, जबकि इन प्राकृत इंद्रियों से अप्राकृत प्रभु के नाम इत्यादि का हम साधन करते हैं भाव को लक्ष्य करके, तब तो साधन होगा, नित्य साधन नहीं होगा। लाभ साधन करो, भाव के लिए जब साधन करेंगे तब तो फिर इसको साधन करें। दिव्य मंगल आदि इसी साधन की श्रेणी में आते हैं, साधारण नहीं। और भाव अवस्था तो और भी, प्रेम सूर्यांत साम्य भाव, ये तो बहुत चीज है। इसलिए आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति, इस सब लोग को शामिल मिली प्रारंभ करना होगा यही से। किंतु यदि वैष्णव का अनुभव नहीं रहा, गुरु वैष्णव का वो भी सदगुरु और सद वैष्णव हो और इस प्रकार के वैष्णव हो, तो वैदिक भक्ति के द्वारा वो उद्देश्य साधित नहीं होगा। उसके द्वारा तो सामान्य सुकृति से संतों का संग मिल जाएगा, यही होगा। किंतु वो भक्ति जिसको राधमयी भक्ति कहते हैं वो संभव नहीं है। वो कैसे होगा? कृष्ण भक्ति रस भाविता मती क्रियतां कुतो भी यदि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यते कलम जन्म कोटि सुकृति। कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से नहीं होगा। ये तो कृष्ण भक्ति रस में सारा हो, जिसकी ये हो गई है भावना, केवल ऐसे महान भक्तों के, रूप गोस्वामी के लाइन में आने वाले महाभक्तों के रसिक भक्तों और तत्कर्ष भक्तों के संभव हो सकता है। इसलिए हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का एक श्लोक उदाहरण देकर के अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत से वक्ता लोग हैं। अरथो भगवान ब्रजेश तनय सब धाम वृंदावन, रम्या काशी तो पार्थना पद पर बल गेन जाकर पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा कुमत्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्प्राप्त। कृष्ण हमारे आराध्य हैं, किंतु याद रखिए कृष्ण तो आराध्य हैं, किंतु कौन से कृष्ण आराध्य? द्वारकाधीश मथुरेश ये सब नहीं। हमारे आराध्य हैं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जिसके हाथों में मुरली है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, जो अपने को नंद का पुत्र कहते हैं, जो राधा कांत हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, वो हमारे आराध्य। जिस प्रकार से वो आराध्य है वृंदावन नहीं आराध्य, वृंदावन का सिस्टर कृष्ण नहीं कहीं जाते और राधा जी भी नहीं जाते। जो कुरुक्षेत्र में जाते हैं वो कृष्ण और राधा जी कुछ दूसरे हैं, उनमें भी अंतर है। केवल मथुरेश कृष्ण और द्वारकेश में भी नहीं, इसमें भी कुछ भाव का तारतम्य है। इसलिए कहते हैं आराध्य भगवान प्रदेश तनय सब धाम वृंदावन, वृंदावन में वृंदावन को छोड़ करके न तो राधा जी जाती हैं न कृष्ण कभी जा सकते हैं। गोपियों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, इससे पढ़कर के और किसी की आराधना श्रेष्ठ, इसलिए राधा नाम पढ़ाती, इसलिए जो कृष्ण की आराधना करते हैं और कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो राधिका जी हैं, कृष्ण भी उनकी आराधना करते हैं। ये कृष्ण ही राधा जी हैं या राधा जी भी कृष्ण हैं ऐसा भी कहा गया है। इसलिए ब्रजेंद्र श्याम सुंदर ही हमारे आराध्य है और गोपियों की आराधना सर्वोत्तम, यही हमारा मूल उद्देश्य है सारे भजनों का। ये गोपियों की दासियों की दासी की दासी हम लोग, इससे बढ़कर क्या होती, रूप गोस्वामी के चरणों की दासी हम लोग हो सकें, इससे बढ़कर क्या होती। यही चैतन्य महाप्रभु का विचार है, श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है, समस्त प्रमाण में श्रीमद् भागवत मूल प्रमाण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है, यही मनोवत है रूप गोस्वामी ने, और उसके बाद में उनके अनु हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी और जितने सब गोस्वामी हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इसके बाद में नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद प्रभु श्रीनिवासाचार्य, उसके बाद में श्री लतीश्वरनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, उसी लाइन में बलदेव विद्याभूषण जी आए, उसी के लाइन में हमारे शिलभक्ति विनोद ठाकुर, ये सप्तम गोस्वामी है, इनको साधारण मत समझना, हमारे गोस्वामियों के बाद में अब तक किसी को गोस्वामी नहीं कहा गया, इन्हीं को गोस्वामी माना गया। ये हमारे नव युवक नरयुग के भक्ति युग के ये प्रवर्तक हैं और इनके बाद में श्री प्रभुपाद और उसी की धारा में कड़ी में हम लोग के गुरुपाद पद्म परम पूज्य पाद हमारे भक्ति माधव गोस्वामी महाराज, देवी महाराज जी इत्यादि के सब हैं। तो उनके चरणों में मैं अपनी पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ कि उन्हीं की वाणी का हम लोग भी इस प्रायोगिक रूप से सारे विश्व में प्रचार कर सकें, जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया है, यही कहकर के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। गौर।